नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृहमंत्री अमित शाह कल असम के धेमाजी जिले में मिसिंग सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए। श्री शाह ने बताया कि मिसिंग समुदाय के युवाओं के लिए शीघ्र ही विशेष भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार मिसिंग समुदाय की चिंताएं दूर करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले डिब्रूगढ़ में श्री शाह ने 1,715 करोड़ रूपये की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि असम में घुसपैठियों पर लगाम लगाई गई है।
असम की सरहदें घुसपैठियों के लिए खुली थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहले सर्वानंद सोनोवाल और फिर हेमंत विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने। मोदी जी और असम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को असम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है असम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स ने टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक विस्तारित करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि तथा जन संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत वेनेजुएला साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। ये सम्मेलन विकासशील देशों में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस सम्मेलन को दुनिया भर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और ये अब तक का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन बनने जा रहा है। श्री वैष्णव ने बताया कि विकसित भारत के लक्ष्य में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट में एआई का उपयोग होने वाला है, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे नए मटेरियल्स की डिस्कवरी हो, चाहे प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग हो, चाहे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन हो, हर एक क्षेत्र में एआई का उपयोग होने वाला है और आने वाले समय में विकसित भारत की जो जर्नी है उसमें एआई का बहुत बड़ा रोल होगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भारत फ्रांस कानूनी और व्यवसायिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहां एक ओर विघटनकारी शक्तियां और भू राजनीतिक तनाव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ढांचे को अस्थिर करने की धमकी दे रहे हैं, वहीं भारत और फ्रांस की साझेदारी केवल एक विलासिता नहीं बल्कि एक जीवन रेखा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के नरेंद्रपुर स्थित नजीराबाद आग की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। घटनास्थल से दो और लोगों के शव बरामद किए गए। इससे पहले 27 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने आग की घटना से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। 25 और 26 जनवरी की रात को एक कंपनी के गोदाम में आग लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2,00,000 रुपए और घायलों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 50,000 रुपए की राशि की घोषणा की। रेलवे ने अपने नेटवर्क के 3 खंडों पर कवच के चौथे संस्करण के लगभग 472 किलोमीटर मार्ग को शुरू किया। ये रेल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये एक दिन में और एक महीने में कवच द्वारा शुरू किए गए मार्गों में अब तक का सबसे लंबा मार्ग है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे के 5 मार्गों पर कुल 1300 किलोमीटर से अधिक पर कवच का चौथा संस्करण शुरू हो चुका है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने सरकार पर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को कम करके बताने का आरोप लगाया है। परिषद का दावा है कि वर्ष 2025 में देश भर में 522 घटनाएं हुई, जो आधिकारिक तौर पर स्वीकार की गई 71 घटनाओं से कहीं अधिक हैं। ढाका में अल्पसंख्यक अधिकार समूह ने कहा है कि इन घटनाओं में 66 लोगों की मौत हुई। इससे 12 फरवरी 2026 को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 11 रन से हरा दिया। जवाब में मुंबई इंडियंस 7 विकेट पर 156 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।